हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा जी और अन्य देवता गण वो श्वेत द्वीप के तट पर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरफ याचना करते हुए, और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो इस याचना के द्वारा, इस याचना के कारण हुए हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इनका जो अवतार है, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए वो स्वयं की इच्छा से, और उनकी इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी कि वो इस भौतिक संसार में आकर अपनी कुछ लीला करना चाहते थे, इसलिए वो अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु इनका प्रकटीकरण या इनका अवतार, इसके पीछे इनकी इच्छा इनकी करुणा से ओतप्रोत थी, और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इनके अवतार को कहा गया है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए इस श्लोक का उच्चारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो मानव रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि भाई तुम इस प्रकार से मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो। तो गुणगान रूप गोस्वामी शुरुआत कैसे करते हैं, नमो महावदन्याय। वदन्याय का अर्थ क्या होता है, जो बहुत दानवीर हो, दानशूर हो, उसे कहते हैं वदन्याय। परंतु यहां पर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप कोई साधारण दानवीर व्यक्ति नहीं हो, महावदन्याय, महादानवीर हो आप। तो मानो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि कौन सा दान आप दिए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये कृष्ण प्रेम का जो धन है ये आप सबको वितरित करने के लिए आए हो, और इससे बड़ा धन या इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। इसलिए एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वो कहते हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। वो श्री चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि मैं आपका दासत्व स्वीकार किया हूं तो मुझे कुछ वेतन मिलना चाहिए। यदि मैं आपकी नौकरी पर लगा हूं तो कुछ वेतन दो। वेतन को क्या कहते हैं, पगार। तो पगार चाहिए मुझे, मैं फुकट में सेवा नहीं करने वाला आपकी, पगार दो मुझे, पगार, वेतन, वेतन। तो मानो चैतन्य महाप्रभु इस भक्त को पूछें कि भाई मैं एक सन्यासी, मेरे पास क्या है पगार देने के लिए? तो कहते हैं कि कौन सी पगार, कौन सा वेतन उन्हें चाहिए? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कि ये जो धन है कृष्ण प्रेम का धन, ये वेतन चाहिए मुझे। मैं जो सेवा आपकी करूंगा तो उसके बदले में वेतन ये चाहिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम धन आप दीजिए। और तब दासकोरी वेतन मोरे, इस प्रकार से मुझे आप अपना दास बनाइए। तो रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप महावदन्याय हैं क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मानो ये पूछे कि भाई कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देंगे ना? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णाय, आप ही वो कृष्ण हैं। तो मानो चैतन्य महाप्रभु फिर रूप गोस्वामी से पूछे भाई कृष्ण तो श्याम वर्ण में आए थे, परंतु दिखने में तो मेरा कोई वर्ण कृष्ण की तरह नहीं दिखता। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने, आपका नाम ही कृष्ण चैतन्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के भाई नाम कृष्ण चैतन्य होने से क्या है, भक्तों के नाम कृष्ण होते हैं। गौरत्विषे, हालांकि आपका वर्ण गौर वर्ण का है, परंतु आप ही वो कृष्ण हैं और आप ही आपके स्वयं का प्रेम धन बांटने के लिए इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हो। जैसे कि मंगलाचरण में हमने वो श्लोक गाया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की करुणा का बखान हुआ है। और कैसे हुआ है उनकी करुणा का बखान? कहा गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण वो करुणा के सिंधु हैं। सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र। तो भगवान श्री कृष्ण करुणा के समुद्र हैं। तो सोचिए समुद्र में कितना जल होता है, कोई नाप नहीं पाएगा कितना जल होगा समुद्र में। तो ऐसे करुणा का कोई समुद्र हो, भगवान श्री कृष्ण की करुणा इतनी है कि समुद्र में जितना जल आ सके उससे भी कई मात्रा में ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की करुणा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की करुणा भगवान श्री कृष्ण की करुणा से ज्यादा है। ये कैसे हम समझ पाएंगे? क्योंकि यदि किसी समुद्र से आपको कुछ लेना है तो आपको समुद्र के तट पर जाना होगा, है कि नहीं? यदि आपको समुद्र का जल या समुद्र से कुछ पाना है तो समुद्र आपके पास नहीं आएगा, आपको समुद्र के पास जाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना हे कृष्ण करुणा सिंधु समुद्र से की है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने देखा कि कलयुग के जो लोग हैं हम सब इतने आलसी हैं कि वो समुद्र के तट पर भी नहीं आएंगे। तो वही श्री कृष्ण जो द्वापर युग में अपने करुणा का समुद्र लेकर आए, तो उन्होंने कलयुग में सोचा कि यहां के लिए ये समुद्र भी काम नहीं करेगा, तो क्या करना होगा? मुझ समुद्र को, मेरी करुणा के समुद्र को इन तक आना होगा। और वो समुद्र का जल लोगों तक कैसे पहुंचता है? जब वही समुद्र का जल वाष्प बनकर किसी बादल में जाता है और वो बादल फिर जब वर्षा के रूप में वो पानी को बरसाता है, तो वही समुद्र का जल वाष्प के रूप में बादल में और वही बादल फिर वो समुद्र से हटकर जहां पर बंजर भूमि है, जहां जल की आवश्यकता है, वहां पर वो बादल जाता है और फिर वहां पर वो वर्षा करता है। और वो बादल कितनी वर्षा करता है, क्या कोई गिन पाया है कि बादलों में से जो वर्षा की बूंदें आती हैं वो कितनी है? और वो वही जल है समुद्र का, परंतु जब बादलों से होकर वो जल आता है तो वो कैसा होता है? मीठा, सबसे मधुर। तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन्याय कहा गया है। एक कथा है, गौड़ीय वैष्णवाचार्य चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक कथा कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो एक उस राजा के समान हैं जो एक समय बहुत कुछ दान देने के लिए उसने घोषणा की अपने राज्य में। तो इस राजा ने घोषणा की कि आज राज्य के जितनी प्रजा है वो सब मेरे महल में आ सकते हैं और जितना कुछ मेरे कोष में है वो सब कुछ मैं आज बांटना चाहता हूं सबको। तो सबको कहा गया कि जो भी कुछ पात्र, कटोरा, बर्तन, पात्र, जो कुछ है वो सब लेकर आओ और जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उतना दानों से मिलेगा। तो पूरी प्रजा आ गई, किसी के पास छोटे छोटे बर्तन थे, पात्र थे, किसी के पास बड़े बड़े, कोई बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर आ गए, कोई ड्रम लेकर आ गए और किसी को कुछ नहीं पूछा जा रहा था। जैसा वो पात्र लाए थे उस पात्र में जितना समा था उतना दान मिल रहा था उन्हें। तो पूरे दिन भर राजा देख रहा था कि कितनी प्रजा आई है आज दान लेने के लिए। परंतु दिन के अंत में जब सारी प्रजा ने अपना अपना दान ले लिया तो एक साधारण सा व्यक्ति वो मायूस अकेला खड़ा था। तो राजा गया उसके पास और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ दान नहीं मिला? तो उसने कहा कि नियम ये था कि पात्र लेकर आना है तो दान मिलेगा, परंतु मैं इतना गरीब हूं, मैं इतना निर्धन हूं कि मेरे पास कोई पात्र भी नहीं है, भीख मांगने का जो कटोरा होता है वो भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे दृष्टिकोण में आपका ये दान मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आपने जो नियम रखा, पात्र लेकर आओ, दान लेकर जाओ, तो आपके दान देने में कुछ नियम है और इसलिए मैं योग्य नहीं बन पा रहा। तो इस भिखारी ने राजा से कहा कि असली दानवीर व्यक्ति वही है जो दान के साथ पात्र भी दे। तो राजा सोचने लगा कि भाई मैं अपने आप को बहुत बड़ा दानी मान रहा था, देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था कि आज पूरे दिन देखो मैंने कितना दान दिया, परंतु ये एक व्यक्ति ने मुझे हरा दिया, ये एक व्यक्ति ने मुझे ललकारा है और मुझे नहीं, मेरी दानवीरता को ललकारा है इसने। तो उस राजा ने कहा, अपने मंत्रियों से कहा कि इस व्यक्ति के लिए पहले पात्र लेकर आओ और फिर उस पात्र में दान दो। तो सभी मंत्रीगण भागे राजा का आदेश, जाकर जो भी महल में कुछ पात्र मिला वो पात्र लेकर आए। तो वो भिखारी राजा की तरफ देखता है, पात्र की तरफ देखता है और वो कहता है, हे राजन, क्या ये शोभा देता है कि आपके हाथों दिया गया पात्र इतना सा? अरे जब मैं जाऊंगा बाहर और जब लोग पूछेंगे कि तुम्हें कितना दान मिला और कौन से पात्र में और ये पात्र किसने दिया, तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि ये हमारे राजा का पात्र है? तो थोड़ी अपनी तो लाज रखो। तो राजा समझ गया कि ये बहुत चतुर व्यक्ति है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि अपने पूरे राजमहल में जो सबसे बड़ा पात्र है वो लेकर आओ। तो सारे मंत्री, सारे सैनिक, जो भी राजा के पार्षद थे, सब घूमने लगे, ढूंढने लगे कि कहां पर सबसे बड़ा पात्र है। तो जितने भी बड़े बड़े कोई संदूक या भोजनालय में, रसोई घर में बड़े बड़े कोई पात्र थे, ये सब लाकर देखा गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो राजा अब देखता है इन सब पात्रों को कि इनमें से सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो राजा भिखारी की तरफ देखता है, अब तुम चुनाव करो, इनमें से सबसे बड़ा पात्र तुम लो। हमारे राज्य में से, मेरे राजमहल में से सबसे बड़ा, बड़े से बड़े पात्र ले आइए लोग, इनमें से देख लो कौन सा पात्र तुम्हें चाहिए। तो अब भिखारी वो पात्रों की तरफ देखता है, राजा की तरफ देखता है और कहता है, सबसे बड़ा पात्र मैं चुनाव कर लो? तो उसने कहा, हाँ। तो भिखारी कहता है कि ये सारे जो पात्र आप लोग लाए हैं, ये सारे पात्र किसी एक पात्र में हैं अभी। कहा कि किसी एक पात्र में है, क्या अर्थ हुआ? ये सारे पात्र, राजा तुम और मैं और सारे तुम्हारे मंत्री, इस पूरे महल में हैं। तो तुम्हारे महल का सबसे बड़ा पात्र है ये पूरा महल। तो ये है तुम्हारा सबसे बड़ा पात्र, क्या ये देना चाहोगे? तो राजा सोचने लगा कि यदि मैंने अपना वचन रखा है कि मैं अपने महल का सबसे बड़ा पात्र दूंगा, तो मुझे अब इस पूरे महल को देना होगा। तो उसने अपना पूरा महल दे दिया। और फिर उस भिखारी ने कहा, ये तो केवल पात्र हुआ, इसके अंदर अब दान भी तो देना है। अरे तो अब दान क्या बाकी रह गया? दान क्या बाकी रह गया कि जितना कुछ ये महल के अंदर है वो और स्वयं आप। तो इस भिखारी ने सब कुछ ले लिया उस राजा का, और ये उदाहरण दिया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु का कि श्री चैतन्य महाप्रभु पात्र अपात्र ना देखी तार मूर्ति। कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो हमें दान देने के लिए आए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को दे दिया। ऐसा नहीं कि कुछ लेकर आए और लेकर कुछ दिया और वो वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को अर्पित कर दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार है। अब जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस गुण की चर्चा करते हैं तो हमें ये देखना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो क्यों सबसे विशेष अवतार हैं। इसलिए उस भजन में हमने उस दिन गाया, परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा, केवल करुणा नहीं, परम करुणा बहु द्विजन निताई गौर चंद्र, कि ये दोनों भाई परम कृपालु, और क्योंकि ये परम कृपालु हैं इसलिए सब अवतारों में ये सब शिरोमणि है। सारा शिरोमणि क्यों? क्योंकि केवल आनंद कंद, इनकी लीला और इनके आने का प्रयोजन केवल आनंद कंद और कुछ नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि वो हर युग में अवतरित होते हैं, किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और वो युग अवतार में आते हैं, युग अवतार के रूप में। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि उन्हें युग अवतार कहा गया है कलयुग का, परंतु वो युग अवतार से कुछ ज्यादा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी के केवल एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? कलयुग 432,000 वर्ष। कलयुग का दुगना द्वापर युग था, द्वापर युग का दुगना त्रेता युग, त्रेता युग का दुगना सतयुग। इन सब को जोड़ दो तो वो एक महायुग होता है। जोड़ दिया। इस एक महायुग को 1000 में आप मल्टीप्लाई करो, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो इस एक महायुग को 2000 में आप इसका गणित करो तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन 24 घंटा। और उस एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले अवतरित हुए, इतना निकट। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते, अभी अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो जब श्रील प्रभुपाद पहले कहा करते थे तो लोग कहते थे, अभी अभी, हाँ 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, अभी अभी। तो यदि हम ब्रह्मा जी का एक दिन लें तब समझ में आएगा कि अभी अभी अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु का। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, सोचिए। एक उदाहरण दिया गया है कि हमारी तुलना एक भिखारी से की गई है, ठीक है, हमारी तुलना एक भिखारी से की गई है कि जो दिन भर भीख मांग रहा है, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, ये सब बोलते हैं ना। तो भिखारी भीख मांग रहा है, दिन भर लगा हुआ है भीख मांगते हुए, और कोई चवन्नी देता है, कोई अठन्नी देता है, कोई गाली देता है, भिखारी का जीवन है क्या? कभी एक रुपया, कभी अठन्नी चवन्नी, कभी गाली। तो दिन भर धूप में यह कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ थोड़ा सा दे रहा है। और ये मानो कि किसी ट्रेन में भीख मांग रहा, तो ट्रेन में कितने सारे यात्री हैं, कितने सारे बोगी हैं, तो एक एक बोगी में जा जाकर भीख मांगता है। और वो एक ऐसे बोगी में घुसता है जहां पर बहुत सारे यात्री हैं, परंतु उनमें से एक यात्री, उसके मन में एक क्षण इच्छा हुई। कौन सी इच्छा हुई? कि मैं किसी को 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूं। केवल एक क्षण उसके मन में इच्छा हुई 1 करोड़ रुपया दान में देने की। उसी समय वो भिखारी कटोरा लेके सामने आया। भगवान के नाम पर चवन्नी दे दे बाबा, वो चवन्नी मांग रहा था। परंतु ये व्यक्ति उस समय 1 करोड़ देने के विषय में सोच रहा है, और सामने ये आ गया तो उसने निकाल कर दे दिया। क्या? 1 करोड़। सभी जग गए। तो क्या सौभाग्य है उस भिखारी का, यदि वो एक क्षण जल्दी आता तो उसे वो 1 करोड़ नहीं मिलता, क्योंकि उस समय वो नहीं सोच रहा था। यदि वो एक क्षण देरी से आता तब भी उसे नहीं मिलता, उसी क्षण वो पहुंचा जब वो सोच रहा था। तो हमारी भी स्थिति उस भिखमंगे की तरह है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में सोचे, क्या सोचे? कि मुझे अवतरित होना है अपने सबसे महावदन्याय रूप में। तो जब उन्होंने सोचा, हम किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से इस कलयुग में टपके, और हमारा मेल हो गया चैतन्य महाप्रभु के अवतार के साथ, ये हमारा सौभाग्य। इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतरित होते हैं एक बार, इसलिए वो युगावतार से ज्यादा कुछ देते हैं। क्या? शास्त्रों में बताया गया है कि युगावतार जब अवतरित होते हैं हर युग में, तो युगावतार ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ धाम तक ले जा सकते हैं बद्ध जीवों को, वैकुंठ धाम तक। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु वो युगावतार से ज्यादा कैसे हैं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें टिकट दिए हैं काय का, किसका? गोलोक वृंदावन, जो कि वैकुंठ धाम से कई गुना परे। अनार्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ, समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर कदम्ब द्युति संजीविन। यहां पर कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो करुणा अवतार है, क्योंकि जो किसी ने अर्पित नहीं किया वो अर्पित करने आए। अनार्पित चरिम चिरात, अनअर्पित। तो ये गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश किसी अवतार ने नहीं दिया। तो मानो सभी अवतार चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे, अरे आप अवतारों का नियम भंग कर रहे हैं, कि ये हमारे नियमावली में नहीं है, कि हम सब नियम के अनुसार जाते हैं, एक युग अवतार के नियम के अनुसार, और युग धर्म स्थापित करते हैं और वैकुंठ धाम तक प्रवेश देते हैं सबको। ये आप हमसे बिना पूछे क्या कर रहे हो अचानक? तो चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण प्रेम में इतने पागल कि वो किसी अवतार को नहीं सुन रहे, और कहीं और देख नहीं रहे, और सबको दे रहे हैं गोलोक वृंदावन में अनुमति प्रवेश। तो ये ऐसी लॉटरी खोले हैं चैतन्य महाप्रभु कि यदि हम इस लॉटरी का लाभ नहीं उठाएंगे तो अगला अवतार चैतन्य महाप्रभु का होगा ब्रह्मा जी के दूसरे दिन। तो यदि ब्रह्मा जी के दूसरे दिन तक प्रतीक्षा करनी है तब फिर हम इस भौतिक संसार में सड़ सकते हैं, परंतु यदि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभी लेनी है तो हमें इसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि और उनकी कृपा क्या है, वो कृष्ण प्रेम किस रूप में देने आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो देखिए और एक उदाहरण हम श्री चैतन्य महाप्रभु का लेकर समझेंगे कि वो कैसे महावदन्य आए हैं। जैसे कि इस संदर्भ में कि उन्होंने गोलोक वृंदावन में हमें प्रवेश दे दिया है, राधा भाव में, महाभाव में, राधा रानी के महाभाव में। तो जैसे कि कोई राजा है और राजा अपनी प्रजा हेतु बहुत कुछ कार्य करता है, और राजा का महल होता है, तो राजा के महल में सर्वसाधारण जनता नहीं आ सकती। राजा के महल में कौन आ सकता है? राजा के निजी परिवार वाले, राजा की पत्नी, राजा के पुत्र पुत्रियां, जो परिवार वाले, किसी भी घर में भी ऐसे ही देखा जाता है ना कि किसी भी घर में कोई भी घुस नहीं सकता। आजकल कलयुग में तो और मुश्किल है। तो घर में, और वो भी घर के अंतःपुर में, अंतःपुर किसे कहते हैं, ड्राइंग रूम तक कोई भी आ सकता है, परंतु अंतःपुर का अर्थ है अंदर बेडरूम, जहां पर तिजोरी है, खजाना है, सब ऐशो आराम अंदर लिविंग रूम में, सब केवल बाहर बैठने के लिए सोफा लगाया जाता है, वहां पर जो भी आए मिलने के लिए वहां से। और आजकल तो लोग उसमें भी अलग अलग विभाजन कर देते हैं कि कोई हमारे परिवार की सुख शांति को चोट नहीं पहुंचाए, तो उसमें भी अलग सेक्शन हो जाता है। जो बाहर वाले मिलने आते हैं वो वहीं पर ही अलग से ही, वो घर के बाहर ही होता है कुछ, क्या बोलते हैं, हाँ हमारे प्राण गौरान प्रभु, उनकी तरफ से इनपुट, एंट्रेंस लॉबी। तो वहां पर एंट्रेंस और एग्जिट भी वहीं से, एंट्रेंस एंड एग्जिट लॉबी दोनों एक साथ। तो राजा का महल, सोचिए राजा के अंतःपुर में केवल राजा के जो निजी पारिवारिक सदस्य हैं वही जा सकते हैं। तो एक तरीका है राजा के अंतपुर में पहुंचने का। यदि राजा प्रजा में से किसी एक को गोद ले ले, है ना? गोद लेने का अर्थ क्या है, एडॉप्ट कर ले, कि जब राजा किसी को गोद ले लेता है तो वो राजा के परिवार का सदस्य बन जाता है। हालांकि वो पैदा नहीं हुआ है उस परिवार में, परंतु राजा ने बाहर जाकर अपनी स्वेच्छा से गोद लिए। पिछले साल हम लोग नेपाल गए थे और वहां पर हम एक किसी होटल में हमको रखा हुआ था सभी भक्तों को, वहां से हम आगे मुक्तिनाथ पर चढ़ाई करने वाले थे। तो नेपाल में बहुत से विदेशी आते हैं, तो मैं बाहर लॉन में जप कर रहा था तो एक दंपति वो अमेरिका से आए हुए थे, तो उन्होंने जब देखा मुझे तो वो आए और बात करना शुरू किया। पूछने लगे कि आप हरे कृष्णा से हैं, हम वहां पर बहुत हरे कृष्णा भक्तों को देखते हैं। तो बातचीत में मैंने पूछा कि आप लोग नेपाल कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि वो कैलिफोर्निया से, अमेरिका में भी कैलिफोर्निया जो कि बहुत ज्यादा प्रगत राज्य है वहां का, वो लोग कैलिफोर्निया से आए नेपाल में किसी बच्चे को गोद लेने के लिए। तो मैंने कहा यहां इतनी दूर नेपाल, आपके वहां नहीं मिलते क्या बच्चे गोद लेने के? तो इन्होंने कहा कि वहां पर बहुत से हैं ऐसी जगह पर जहां पर आप गोद ले सकते हैं, ऑर्फनेज जिसे कहते हैं, अनाथालय, परंतु वहां के जो बच्चे हैं सरकार उनकी देखरेख बहुत अच्छी से करती है, चाहे कोई अनाथ हो या सनाथ हो। वहां के जो देश हैं वहां पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, तो भी कोई गम नहीं, सरकार सब आपका मेंटेनेंस करेगी, वहां पर ये सारे नियम हैं। भारत में यदि ये नियम रख दिया जाए तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो ये दंपति ने कहा कि वहां पर जो भी अनाथ हैं वो सरकार बहुत अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं, परंतु हम ऐसे देश में आना चाहते हैं जैसे नेपाल, बहुत ही गरीब जैसा देश, तो नेपाल में यहां के किसी अनाथ को हम गोद लेना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है इन अनाथों की, या इन अनाथों को हम जैसों की जरूरत है। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया से नेपाल के किसी छोटे से गांव में आए किसी एक बच्चे को गोद लेने के लिए। तो हमने पूछा कि आप फिर चुनाव कैसे करते हो कि कौन से बच्चे को गोद लेना है आपको? तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से देखकर चुनाव नहीं करते, हम भगवान पर छोड़ देते हैं कि हम जिस अनाथालय में गए और सबसे पहला बच्चा जो हमें दिखाया गया हम उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। और उन्होंने दिखाया छोटा सा नेपाली छोटा सा शिशु दिखाया कि इस शिशु को हमने गोद लिया। तो मैं सोच रहा था इसका भाग्य देखो कि ये इसने सोचा भी नहीं होगा कि अब ये कुछ दिनों में कैलिफोर्निया में जाके बड़ा होने वाला है, कि इसका भाग्य क्या भाग्य लिखा हुआ था कि किसी अनाथालय में नेपाल के किसी गांव में वहां पर बड़ा होगा, पता नहीं कोई सरकार भी कुछ देखरेख करेगी कि नहीं। तो यहां पर इसका सौभाग्य इस प्रकार से उदित हुआ। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हम सब कलयुग में, ये कलयुग एक बड़ा अनाथालय है और हम सब अनाथ घूम रहे हैं इस अनाथालय में, और श्री चैतन्य महाप्रभु उस राजा के समान हैं कि जो किसी और को अनुमति नहीं देगा अपने अंतपुर में। अंतपुर कौन सा उनका? गोलोक वृंदावन धाम। उस अंतपुर में और किसी को अनुमति नहीं है। केवल एक ही तरीका है, यदि ये राजा इस अनाथालय में आकर गोद ले ले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस राजा के समान हैं जो इस कलयुग के अनाथालय में आए हैं, और वो किसे गोद लेने के लिए आए हैं? ये जो दंपति आए इनके अंदर तो क्षमता इतनी ही थी कि केवल एक ही शिशु को वो गोद ले सकते थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु में इतनी शक्ति है कि वो हम सबको, इस पूरे कलयुग के जो निवासी हैं, हम सबको गोद ले सकते हैं वो, और ले सकते नहीं, लेने आए हैं। क्या हम जाना चाहेंगे? परंतु कई बार स्थिति ऐसी है हमारी कि हमें अनाथालय ज्यादा पसंद आ रहा है, और कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि आप राजा ही है ना, चैतन्य महाप्रभु के विषय में संशय करते हैं कि क्या ये वास्तविक रूप में भगवान है, क्या वास्तविक रूप में वहां पर आपके पारिवारिक सदस्य आप बनाएंगे हमें, या केवल एक संतरी घर घर बाहर खड़ा करेंगे। हमारे अंदर ये सारे संशय उत्पन्न होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें गोद लेने के लिए आए हैं। हमें करना क्या है? हमें माया की गोद से बाहर निकलकर उनकी गोद में आना है। अभी हम सब माया की गोद में सोए हुए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो आकर कौन सा गीत गा रहे हैं? जीव जागो गौरा चंद्र बोले, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटनिद्र जाओ माया पिशाचीर कोले, कोटनिद्र जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौरचंद्र बोले। श्री गौरचंद्र वो बोल रहे हैं सबको, जीव जागो, मैं गोद लेने आया हूं, कम से कम जाग कर मेरी गोद में तो आओ। परंतु हमारी स्थिति क्या है? कोट निद्र जाओ माया पिशाचीर बोले, कि हम गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। किसके गोद में? ये पिशाची, कौन सी पिशाची? माया, माया देवी की गोद में हम निष्फिकर रूप से सोए हुए हैं। इसलिए हमें यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें सबसे पहले जगना है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत शास्त्रों में कहा गया है कि उठिए उठिए, जागृत अवस्था में आइए, और जागृत अवस्था में पहचानिए कि कौन आए हैं हमें कृपा देने, कृपा बांटने, हमें गोद लेने और हम उनके अंतपुर, उनके गोलोक वृंदावन धाम में ले जाने के लिए। तो हमारी स्थिति क्या है कि जागते सो हमें ऐसी कृपा मिली है इस कलयुग में कि हम पहचान नहीं पा रहे कि ये कृपा है या कोई भ्रम है। जैसे कोई व्यक्ति जब नींद से उठता है तो उसे कुछ समय लगता है अपने आप को संभालने में। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने हरिराम संकीर्तन से हमें उठा लिया, परंतु अभी भी हम भ्रमित अवस्था में हैं, जान नहीं पा रहे कि क्या हम वास्तविक रूप में जग गए या अब तक सपना देख रहे हैं। होता है ना कभी। एक और उदाहरण दिया गया है कि हमारी स्थिति एक चींटी के समान है। क्षमा करना, मैं ये सारे उदाहरण दे रहा हूं। हमारी स्थिति अनाथ के समान, भिकमंगे के समान, परंतु आप लोग राजी हैं कि नहीं। तो हमारी स्थिति एक चींटी के समान। चींटी को आपने देखा होगा ना, यहां पर हम अपने आप को देख लें तो तुलना चींटी से की गई है। तो हमारी तुलना चींटी से की गई है। यदि चींटी के सामने एक इतना बड़ा बूंदी का लड्डू रख दिया जाए, काहे का लड्डू, बूंदी का लड्डू, और ये बूंदी का लड्डू एकदम ताजा बूंदी से बना हुआ घी में, जिसमें काजू बादाम, वो वाला काजू नहीं, जिसमें काजू बादाम इलायची पिस्ता किशमिश और क्या केसर शक्कर भी कर्पूर शुद्ध घी, इससे बना हुआ ये लड्डू। तो सोचिए एक चींटी के लिए ऐसा बूंदी का लड्डू और क्या चाहिए, है ना, चींटी को और क्या चाहिए। परंतु ये लड्डू इतना बड़ा है और वो चींटी इतनी सी है, तो वो लड्डू को कहां उठाकर लेकर जाएगी चींटी। क्या वो चींटी चाहे कितने भी चींटियों को बुला ले, क्या वो लड्डू को उठा पाएगी? वो चींटी कितना ले पाएगी उस लड्डू से? हालांकि देख रही है इतना बड़ा बूंदी का लड्डू और उसने इतनी लालसा हो रही कि ये पूरा लड्डू ले लूं, परंतु क्षमता नहीं। क्षमता क्या है? केवल उसमें से एक बूंदी, एक बूंदी, और वो बूंदी भी बहुत बड़ा विशाल पर्वत है उस चींटी के लिए। तो वो चींटी उस बूंदी के लड्डू में से एक बूंदी का कण और उस कण में से भी एक कण, वो इतना सा लेकर उसमें आनंदित होकर वो भाग रही है चींटी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे सामने लाकर रख दिया है ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये उस इतने बड़े बूंदी के लड्डू के समान है। और हम लोग कौन है? वो चींटी जो इस हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ देख रही है। एक आपके सामने थोड़ा सा गणित हम रखेंगे तो आपको कुछ कल्पना आएगी कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या ला कर दिया है। तो थोड़ा आपका पेन पेपर निकाल लो और इस गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के कितने नाम है? हाँ, सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम है ना। तो शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के सहस्त्र नाम और विष्णु का जो सहस्त्र नाम है इनको यदि आप इनकी तुलना राम के नाम से करो तो राम का एक नाम वो विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के सहस्त्र नाम राम का एक नाम। तो एक तरफ 1000 विष्णु के नाम और दूसरी तरफ राम का एक नाम, एक बराबर। और राम के 3 नाम वो कृष्ण के एक नाम के बराबर। तो कृष्ण का एक नाम विष्णु के कितने नाम के बराबर हुआ? हाँ? नहीं, फिर से बोलता हूं, विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर। तो कृष्ण का एक नाम उसमें कितने विष्णु के नाम है? 3000 है ना। इतना कठिन गणित नहीं है, 3000 ना, 3000 विष्णु के नाम हो गए 1 कृष्ण का नाम है कि नहीं। अब विष्णु सहस्त्र नाम का किसी ने उच्चारण किया है बिना निरंतर रूप से बिना रुके? विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किसी ने किया है? नहीं किया। विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण यदि कोई जल्दी से जल्दी भी करे तो 40 मिनट लगता है। कितना मिनट? 40 मिनट। तो अब इसकी भी गणना आप लोग करना, 40 मिनट विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करने में। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र में कितने कृष्ण के नाम हैं? गिनिए। हाँ, चार कृष्ण के नाम है और कितने राम के नाम है? तो अब कितने विष्णु के नाम हो गए? हाँ, 16000। ठीक है, एक एक कर लेते हैं। कृष्ण, कृष्ण के 4 नाम अर्थात 12000 और राम, राम के 4000 तो 16000 हो गए। तो 16000 विष्णु के नाम अर्थात 16 बार विष्णु सहस्त्र नाम यदि कोई उच्चारण करेगा तो कितना समय लगेगा? कितना घंटा हो गया? घंटा बताओ, घंटा 5 घंटे। अच्छा, 10 घंटे 40 मिनट। तो यहां पर ये दोनों गणना हम करें तो 16000 विष्णु के नाम और 10 घंटा 40 मिनट, ये जब आप लेंगे तब जाकर 1 हरे कृष्ण महामंत्र होता है। कितना समय लगा, कितना समय लगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में आपने जो उच्चारण कर लिया नाम के भगवान का, वो पिछले युगों में किसी को 10 घंटा 40 मिनट 16,000 बार लेने के बाद तब उसका फल उसे मिलता था। तो क्या ये उस बूंदी के लड्डू के समान नहीं है? क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र उस विशाल बूंदी के लड्डू के समान नहीं है, और हम उस चींटी के समान, कि हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का एक मंत्र भी उच्चारण करने में आलस आ रहा है? तो अब यदि मैं आपके सामने एक और कैलकुलेशन रख दूं कि जब हम 16 माला करते हैं तो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप, उसमें कितने विष्णु के नाम आ गए? ये होमवर्क आपके लिए, अगले साल बताना उसका कैलकुलेशन करके, अगली गौर पूर्णिमा में पूछा जाएगा आपसे किस 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र में कितने कृष्ण के नाम, कितने राम के नाम। और यहां पर तो देखिए, राम का नाम कोई भगवान कृष्ण का भी एक नाम राम है, राधा रमण इति राम। तो यदि कोई उस चेतना से कर रहा है तो कितना हो गया? 24,000 हो गया। तो सीधा उसने तो एक जंप मार ली 4,000 से, और 10,000 ऊपर जंप मार ली उसने। तो फिर यदि आप इसकी गणना करें कि 2 घंटा यदि कोई साधक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो कितने कितने ऐसे विष्णु के नाम उसने उच्चारण कर लिए हैं। और यदि हम अब इसकी गणना लगाएं कि हम कब से 16 माला शुरू किए हैं, कि हमने 16 माले कब से शुरू किया, तब से लेके अब तक हर दिन का 16 माला, हर महीने का, हर साल का मल्टीप्लाइड बाय वो जो कैलकुलेशन हमने किया, तो कितना समय हमने बचा लिया है और कितने भगवान के नाम उच्चारण कर लिए हैं उसके अंदर। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कोई कल्पना भी करने जाए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चित्ते भ्रमित होए पाबे चमत्कार, कि उसका चित्त भ्रमित हो जाएगा और वो केवल चमत्कार ही चमत्कार देखेगा श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। कि यदि कोई पिछले युग के कुछ योगी ऋषि मुनि यदि ये देख लें कि कलयुग वालों को, इतने अधम इन कलयुग वालों को भगवान स्वयं आकर और वो भी ऐसी विधि दे रहे हैं कि इतने कम समय में और इतनी मात्रा में इतना हरिनाम ये लोग ले पा रहे हैं, नहीं ये नाइंसाफी, वो लोग मानो कहें कि ये नाइंसाफी है। तो चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा किसी और के लिए नाइंसाफी लग रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि इनकी कृपा इतनी असीम है, इतनी असीमित है कि जिसकी गणना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर द्विषे नमः। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी कृपा केवल भारतवर्ष में फैलाई, परंतु श्रील प्रभुपाद ने वही बूंदी का लड्डू लिया और उसी बूंदी के लड्डू को श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में फैलाया। और ऐसा नहीं, श्रील प्रभुपाद ने अपने पार्षदों के साथ ऐसे कई बड़े बड़े लड्डू बनाए और सब जगहों पर पूरे विश्व में, सभी देशों में, प्रांतों में, ग्रामों में श्रील प्रभुपाद ने इन लड्डुओं को भेजा और सब जगह पर ये लड्डू एक ही तरीके के हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर घी कम है, कहीं पर काजू कम है, सब जगह पर वो लड्डू के जो गुण है वो एक समान। श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम की प्रदक्षिणा करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि कोई श्री श्री कृष्ण बलराम की केवल प्रदक्षिणा कर ले तो इस भौतिक संसार में जो ऊपर नीचे की प्रदक्षिणा हो रही है उसकी, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यहां गोल गोल प्रदक्षिणा और इस भौतिक संसार में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे प्रदक्षिणा कौन सी है? अधम योनि से ऊंची वाली योनि, ऊंची योनि से फिर से अधम योनि, ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि इसे बंद करना है तो ऐसे घूमो, कृष्ण बलराम की प्रदक्षिणा करो। और श्रील प्रभुपाद गुणगान कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण वो अवतरित हुए और उन्होंने हरिनाम की ऐसी मिठाई हमें लाकर दी। तो बहुत बड़े बड़े सन्यासी श्रील प्रभुपाद के पीछे पीछे मॉर्निंग वॉक में प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो उनमें से एक अभी अभी आए हुए एक भक्त वो भी थे, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पीछे से कहा, प्रभुपाद मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो सभी सन्यासी देखे इसकी हिम्मत कि ये एक कल का आया हुआ और प्रभुपाद के साथ ऐसे बात कर रहा है कि मुझे मिठाइयां अच्छी लगती है। प्रभुपाद ने पीछे देखा, सभी पीछे देखे, ये डर गए थोड़ा कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, मिठाइयां अच्छी लगती है तुम्हें? हाँ प्रभुपाद, मुझे बहुत अच्छी लगती है मिठाइयां। तो तुम्हारा नाम ददी बक्ष दास, दीक्षा दे दी प्रभुपाद ने उसे वहीं पर। सभी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए, उन्हें लगा कि श्रील प्रभुपाद जी डांटेंगे, फटकारेंगे, कि शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें बोलते हो। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, वो देख रहे हैं प्रभुपाद की तरफ, इन भक्त की तरफ, और ये भक्त आश्चर्यचकित होकर श्रील प्रभुपाद चलने लगे, बाकी सारे शिष्य खड़े रह गए, और ये भक्त जय प्रभुपाद, मेरा नाम ददी बक्ष दास, ददी बक्ष दास। ये नाम इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दिया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि दही का भक्षण करते थे और दूध दही की बनी हुई मिठाइयों का भक्षण करते थे, तो वहीं पर दीक्षा मिल गई इन भक्त को। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसी की तरह है, इंस्टेंट मर्सी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज इंस्टेंट, आपको केवल मौजूद होना है, कृपा तुरंत आपकी। इसलिए यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान हेतु उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा, इसके विषय में यदि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि चींटी वो उस बूंदी के, एक बूंदी के कण को लेकर नाचते हुए बोल रही है कि ये बूंदी का लड्डू कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ये हमारी स्थिति है। हम कुछ दो दिन पहले गौर कथा प्रारंभ किए और केवल हमने मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के एक अध्याय के कुछ श्लोक लिए हैं केवल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला कितनी असीमित है। वो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी लीलाएं की वो एक समुद्र के समान है। उनकी लीला लीला समुद्र, और जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मटका लिया और उस मटका लेकर समुद्र का एक मटका भर जल लिया उस समुद्र में से। तो सोचिए समुद्र में से कोई मटका भर जल ले तो कितना जल आएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रूप सनातन अन्य गोस्वामी मटका भर चैतन्य लीला का लिए वो चैतन्य लीला के समुद्र से चैतन्य लीला के एक मटके में लिया और वो उसका पान करने लगे। और वो जब पान कर रहे थे तो कुछ बूंदे छलकी यहां वहां और वो मैंने ले, और वो है चैतन्य चरितामृत। तो सोचिए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके जो गुण हैं उनकी चर्चा हम कहां से शुरू करें, कहां आगे बढ़ें और कब अंत करें। इसलिए इनके गुणगान के विषय में कहा गया है, आनंद लीला मय विग्रहाय हेमाब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो असीमित है। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमाब दिव्य छवि सुंदराय, और उनकी छवि इतनी सुंदर है हेमवर्ण गौरवर्ण के वो चैतन्य महाप्रभु। और वो केवल अपनी सुंदरता दिखाने नहीं आए, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय वो महाप्रेम रस बांटने आए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो महाप्रेम रस, इसकी तुलना एक शेरनी के दूध से की गई है। शेरनी का जो दूध होता है बहुत शक्तिशाली होता है, शेरनी का नहीं सिंह का दूध बहुत शक्तिशाली होता है, उसे किसी भी पात्र में आप नहीं उतार सकते। यदि सिंह का दूध किसी मटके में कोई उतार दे तो मटका फट जाए, इतना शक्तिशाली होता है। इसलिए सिंह का दूध सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आज के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह राशि में पैदा हुए। उस सिंह राशि में पैदा हुए इसलिए इनकी कृपा भी सिंह के दूध के समान है। और कोई साधारण पात्र इसे नहीं अपने अंदर अटा पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि ये जो कृपा मैं लेकर आया हूं ये सिंह के दूध के समान। इसके लिए वो पात्र कौन सा बता रहे हैं, ये ऐसा पात्र जो कि चार पदार्थों से बना हुआ। सबसे पहले तो इस पात्र को हमें बनाना है इन चार पदार्थों से। तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन, ये चार पदार्थ है। कि तृण से भी अधिक नम्र, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, दूसरों को हमेशा मान देते हुए स्वयं कभी मान की अपेक्षा न करते हुए, इन चार पदार्थों से, दीज आर द फोर इंग्रेडिएंट्स, इनसे ये पात्र को बनाना है, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसमें अट पाएगी। अब इस कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसी है कि लोगों ने पात्र उल्टा कर रखा है, तो सबसे पहले पात्र को सीधा रखना है हमें, और इस पात्र में हमने सीधा भी रख दिया तो हमने बहुत छेद कर रखे हैं नीचे पात्र के, कितने छेद हैं। कौन से छिद्र हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, और ये भी कलयुग में छोटे छोटे छिद्र नहीं है, बड़े बड़े छिद्र, और चाहे कितना भी प्रयास करो इसको वाटरप्रूफ करने का, इसमें क्या कुछ हम प्रयास नहीं कर रहे फिर भी लीक होता है ये। तो ये हमारी स्थिति है कि ऐसा पात्र जिसमें उसे उन छिद्रों को रोकना तो दूर, हम छिद्रों को और बड़ा कर रहे हैं। तो कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये छह छिद्रों को लोग और बड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा एक बूंद भी नहीं रुके। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले उन छिद्रों को बंद करना है और फिर देखना है कि वो पात्र उन चार पदार्थों से बना हुआ है कि नहीं, या छिद्रों को बंद करने से पहले सीधा रखना है, फिर छिद्रों को बंद करना है, फिर उन चार पदार्थों से पात्र बना है कि नहीं। तो ये हृदय की तुलना उस पात्र से की गई है और चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से की गई है। बहुत ही सुंदर आदि लीला में श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के संदर्भ में, कहा गया है, चैतन्य सिंहेर नव द्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से की गई है। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, हालांकि नवद्वीप में कहीं पर सिंह नहीं दिखेगा आपको, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो सभी को ऐसा लगा कि मानो नवद्वीप में कोई सिंह अवतरित हुए हैं। चैतन्य सिंहेर नवद्वीप अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से की गई है। सिंह ग्रीव, उनकी जो ग्रीवा है वो सिंह के समान, सिंह वीर्य उनका जो, उनकी जो बल, उनकी शक्ति, उनकी भुजाएं वो सिंह के समान, और हुंकार, सिंह की हुंकार, सिंह की जो चिंघाड़ है वो चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान उनके हुंकार। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से की गई है? से सिंह वसुख जीवे हृदय कंदरे कलमश द्विरड नाशे यहार हुंकारे। क्यों की गई है? क्योंकि एक सिंह कहां रहता है? गुफा में, कंदरा में सिंह रहता है। अब यदि किसी जंगल में सिंह की गुफाओं को कोई जाकर देखे कि यदि आपस में सिंह आए और अपनी गुफाओं का रेट लगाए, स्क्वायर फीट का कितना रेट होगा, तो इस भौतिक संसार में जब किसी के घर का रेट लगाया जाता है तो क्या क्या पहलू देखे जाते हैं? कि घर कितना अच्छा बांधा है, कौन से लोकेलिटी में है, क्या माल लगाया है, और क्या कितना बड़ा है, कितना वेल फर्निश्ड है। तो जिसका घर जितना पॉश है उतना स्क्वायर फीट ज्यादा बढ़ जाता है ना उसका। तो यदि ये सारे सिंह आकर चर्चा करें कि इन सभी सिंहों की जो गुफाएं कंदराएं हैं उनमें से सबसे पॉश कंदरा किसकी है, सबसे कीमती, वेल फर्निश्ड, तो कंदराओं में, गुफाओं में क्या दृष्टिकोण है कि कौन सी गुफा सबसे कॉस्टली है, जो सबसे अंधेरी गुफा हो, जो सबसे अंधेरी गुफा, सबसे गहरी जो गुफा होती है वो उनके समुदाय में, सिंहों के समुदाय में वो सबसे पॉश गुफा है, कॉस्टली। तो ये उदाहरण दिया गया है कि यदि चैतन्य महाप्रभु सिंह है तो ये सिंह ऐसी कंदरा को ढूंढ रहे हैं जो सबसे अंधेरी है और सबसे गहरी है, और ढूंढते ढूंढते ये सिंह कहां पहुंचे, कलयुग में। और कलयुग में जो कलयुग के निवासी, उनके हृदयों को जब इस सिंह ने देखा तो देखा कि ये सबसे अच्छी गुफा है मेरे रहने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधकार यहीं पर है और सबसे ज्यादा गहरी यही गुफाएं हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है, सेई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कि चैतन्य महाप्रभु, उस चैतन्य सिंह ने जब देखा, सेई जीवेर वसुक हृदय कंदरे, हमारे हृदयों के कंदरों को देखा, कंदराओं को देखा, तो चैतन्य सिंह ने देखा कि यही जगह है जहां पर मुझे रहना है। तो वहां पर आकर उन्होंने किया क्या, वहां उस गुफा में जब सिंह किसी गुफा में प्रवेश करता है तो उस गुफा में बहुत से प्राणी होते हैं, अलग अलग प्राणी होते हैं, कोई सियार, सरगाल, चमगादड़, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, ये बहुत से प्राणी होते हैं। तो ये सिंह इन प्राणियों को कैसे खाली करता है, हुंकार। वो सिंह केवल एक हुंकार देता है, सभी उस गुफा को खाली कर देते हैं तुरंत। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारी जो ये हृदय कंदरा है इसके अंदर हमने इन सब तुच्छ प्राणियों को निवास स्थान दे दिया है। किनको? ये भौतिक इच्छाओं को। ये भौतिक इच्छाओं की तुलना की गई है सियार, श्रृगाल, चमगादड़, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कीड़े, कीटाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर, मक्खी, ये सारी हमारी भौतिक इच्छाएं इस जो अंधकार रूपी हृदय कंदरा है उसके अंदर ये सब प्राणियों के रूप में है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह के रूप में इस हृदय कंदरा में आएंगे और एक हुंकार देंगे, और उनकी हुंकार है क्या, सारी भौतिक इच्छाएं रेंगते हुए इस कंदरा से बाहर भागेंगे। परंतु वो सिंह उस कंदरा में प्रवेश नहीं कर सकता यदि उस कंदरा को बंद कर दिया गया हो तो। तो हमें करना क्या है, हमें केवल इस कंदरा को खुला छोड़ना है, केवल खुला छोड़ना है। और चैतन्य सिंह तैयार है, अवतार ले लिया है। विशेष रूप से आज गौर पूर्णिमा के महोत्सव में वो चैतन्य सिंह ने अवतार ले लिया है, केवल वो कंदरा ढूंढ रहे हैं। कौन सी कंदरा है जिसमें वो प्रवेश कर हुंकार देकर वो उन प्राणियों को निकालकर वो अपना निवास स्थान वहां पर बनाए। तो क्या आप लोग सब चाहते हो कि ये चैतन्य सिंह आप लोगों के हृदय कंदरा में प्रवेश करे? तो क्या करना है? हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा इस कंदरा को खुला रखना है, इस गुफा को खुला रखना है, बस यही करना है। इसलिए आज का ये जो पावन पर्व है, आज के इस पावन अवसर पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कृतज्ञता से कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। हम उस चींटी के समान जो ढूंढ रहे थे कुछ शक्कर के कण, परंतु हमारे सामने बूंदी का इतना बड़ा लड्डू इन दोनों ने लाकर रख दिया गौर नेताएं ने। और इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा के द्वारा उन्होंने यही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम तक, हमारे द्वार तक ला कर दे दी। तो इन सब का धन्यवाद देते हुए आज का ये महोत्सव हम मनाना चाहेंगे कि हम कम से कम अपने पात्र को सीधा तो रखें, हम कम से कम चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को ग्रहण तो करें। और इसी में चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता छिपी है कि वो जो लेकर आए हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र को, वो हम अपनाएं। और इसमें हमारा फायदा कितना है इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया, कितना फायदा है ये एक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में। 10 घंटा 40 मिनट नहीं तो बैठना पड़ता था, 16,000 बार, परंतु ये सबको चैतन्य महाप्रभु ने एक इस हरे कृष्ण महामंत्र में दे दिया। इसलिए यदि उन्हें हमें प्रसन्न करना है तो आज के दिन विशेष रूप से और आज से लेकर अंतिम श्वास तक हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाएं। और यही भेंट, हालांकि इनका जन्म दिवस है आज, परंतु ये भेंट लेकर आए हमारे लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र की, तो हम क्या इन्हें दे सकते हैं? हम इन्हें हमारी श्रद्धा, हम इन्हें हमारी शरणागति, यही दे सकते हैं जो भेंट ये लेकर आए हैं। तो यही प्रार्थना आज हमारी होनी चाहिए कि हमारे ये पूरा जीवन जो कुछ बाकी रह गया है, शेष जो भी जीवन बाकी रह गया है, इस शेष जीवन में, इस सारे शेष जीवन को मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अर्पित कर लूं और जो उनकी इच्छा है वही मैं अपनी इच्छा को बना लूं। बोलो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हरे कृष्णा।